जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि लावण्या शायद अब चल नहीं सकती है, तो आस्तिक और अरुणिमा के साथ लावण्या के माता पिता के चेहरे पर भी एक मातम का भाव था। डॉक्टर तो वहां से चले गए, लेकिन उन चारों के चेहरों पर उनके जाने का प्रभाव अभी भी नजर आ रहा था। पर तभी लावण्या की माँ वहां आती है और आस्तिक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो सदमे में थी और आस्तिक इस थप्पड़ के लिए रेडी नहीं था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। लावण्या की माँ ने अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए चिल्लाना शुरू किया और उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से आस्तिक राय चंद, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है, तुमने किया है उसकी ये हालत। मुझे शर्म आती है कि मैं कभी तुम्हारे अंदर अपने बेटे को देखती थी। मैं तो तुम्हें बेटा बेटा कहकर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट नूडल्स बनाया करती थी, लेकिन मैं क्यों भूल गई कि तुम माफिया के परिवार से हो और तुम भी अपने परिवार की तरह खूनी हत्यारे हो। आस्तिक अंदर से उबल रहा था, लेकिन उसने कस के अपनी भावनाओं को काबू करके रखा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। पर वो जानता था कि इस वक्त वो लावण्या की माँ को जवाब क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो झूठ नहीं कह रही थी। स्कूल के दिनों में जब नेहा जी, आस्तिक की माँ, उस पर ध्यान नहीं देती थीं या फिर उसे हार्ट ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज देती थीं, तब वो अपने स्कूल से भागकर लावण्या के घर ही आता था और उसकी माँ उसके लिए प्यार से नूडल्स बनाकर खिलाती थी। लावण्या के पिता लावण्या की माँ को संभालते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, संभालो खुद को, ये आस्तिक की गलती नहीं है। लेकिन लावण्या की माँ चिल्लाते हुए बोली, इसकी गलती नहीं है, कैसे नहीं है इसकी गलती, सारी गलती इसी की है, इसी की वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में है। वही तो इसे पसंद करती थी ना बचपन से ही, लेकिन इसने कभी उसे तवज्जो ही नहीं दी। आस्तिक उनकी तरफ देखते हुए अपने गुस्से पर काबू करता है, लेकिन अपनी भारी आवाज में कहता है, मैंने कभी भी लावण्या को पसंद नहीं किया, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए ऐसा सोचूंगा, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। लावण्या की माँ गुस्से में बोली, अगर बुरा नहीं चाहता तो कैसे हो गया उसके साथ इतना बुरा, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, तुम ही ने उसे धोखे से बुलाया था हम लोगों को जरिया बनाकर, अगर तुम उसे नहीं बुलाते तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। तुम्हें पता है ना वो एक मॉडल है और अब तुम्हारी वजह से वो कभी भी रैंप वॉक नहीं कर पाएगी, उसका सारा करियर खराब हो गया है, ये सब तुम्हारी गलती है। अरुणिमा आज देख सकती थी कि आस्तिक ने लावण्या की माँ के गुस्से भरे शब्दों का जवाब आराम से दिया था और वो इतने सब के बाद भी चुप खड़ा था। वैसे तो अरुणिमा को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि आस्तिक भड़क नहीं रहा था, लेकिन वो जानती थी कि आस्तिक ने कैसी खुद को काबू करके रखा हुआ है। लावण्या की माँ गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि आस्तिक के साथ साथ अब वो उसके पूरे परिवार को भी घसीट रही थी। वो गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहती है, तुम होगे अपने परिवार के जैसे, तुम्हारा पूरा परिवार गलत कामों में शामिल है और तुम भी उनके जैसे ही हो, मैं कैसे भूल गई, तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हारी माँ के रहते हुए बाहर रंग रलियां बनाई थी और अपने नाजायज बच्चों को। बस बहुत हो गया, आखिरकार आस्तिक भी चिल्ला पड़ा और अपनी डरावनी लाल आंखों से वो लावण्या के माता पिता को देख रहा था। उन आस्तिक को देखकर अचानक से लावण्या के पिता ने उसकी माँ को संभाल लिया, क्योंकि वो आस्तिक के गुस्से को जानते थे। आस्तिक गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहता है, आपकी नाराजगी मुझसे है, जो कहना है मुझे कहिए, लेकिन मेरे परिवार तक जाने की हिम्मत मत करना। पर जहां तक बात रही आपकी बेवकूफ बेटी की, तो अगर उसने अपना मुंह नहीं बंद रखा होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। वो मेरे घर में रहकर, मेरे साथ रहकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी और उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो है जिसके साथ उसने ये साजिश रची। अब अगर वो सूर्य आकर तुम्हारी बेटी को मार भी डालेगा तो भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। आस्तिक गुस्से में इतना कहता है और अगले ही पल उसने अरुणिमा की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। अरुणिमा हैरानी से लावण्या के माता पिता को देख रही थी, लेकिन आस्तिक एक मिनट भी वहां नहीं रुका। वो उसे सीधे ले जाकर पार्किंग एरिया में आता है और सीधी अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अरुणिमा को अंदर की तरफ बिठाता है और खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसकी आंखें बंद थी और उसने कसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था। उसके हाथों की उभरी हुई नसें बता रही थीं कि उसके अंदर कितना गुस्सा है। अरुणिमा ने आस्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक तुम ठीक तो हो ना? लेकिन आस्तिक ने तुरंत गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। उसके तुरंत बाद आस्तिक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार से उसकी गाड़ी हॉस्पिटल से निकलकर घर की तरफ बढ़ गई। वो हैरानी से पूरे रास्ते आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक की नज़रें सड़क पर और स्टीयरिंग व्हील पर थीं, लेकिन उसके हाथ जिस तरीके से कसे हुए थे और वो जिस तरीके की ड्राइविंग कर रहा था, उससे अरुणिमा समझ सकती थी कि उसके दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है, आस्तिक तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और अरुणिमा भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। आस्तिक वहां से घर की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं आ रहा था।
लेकिन अरुणिमा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं। आस्तिक ने सिर हिलाया और फिर घर की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे पलटकर अरुणिमा को देखा तक नहीं, उसके बजाय वो घर के अंदर चला गया। अरुणिमा भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आती है। उसने देखा कि आस्तिक ने अपने कोट को उतारकर सोफे पर फेंक दिया और तेजी से रूम की तरफ बढ़ गया। अरुणिमा भी घर के अंदर आती है तभी उसका फोन बजने लगता है। उसने जब फोन देखा तो ये उसकी माँ आशा जी का फोन था। अपनी माँ का फोन देखकर अरुणिमा को फिर से वो सपना याद आ जाता है। वो कौन लड़की है जिसे उसने बचपन में देखा था और उसे याद क्यों नहीं आ रहा है? बार बार उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था। वो खुद को ही अपने सामने कैसे देख पा रही थी और वो हादसा उसे बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है?